सुर्खियों में
नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अम्बरीश सक्सेना। आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री के असम और पश्चिम बंगाल दौरे पर। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार जगदीश उपासने। जगदीश उपासने जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
तो उपासने जी, जैसा हमें पता है कि प्रधानमंत्री जी असम और पश्चिम बंगाल के दौरे पे हैं और वहां पर उन्होंने काफी बड़ी संख्या में नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी है और पुरानी जो परियोजनाएं पूरी हो गई थी उनका लोकार्पण किया है। हमारी जो भारत सरकार है ये विकास पर सबसे ज्यादा ध्यान देती है और खासतौर से उन इलाकों में जो दूर दराज में है, जो मुख्य धारा से थोड़ा अलग है। पूरे सिर्फ बंगाल की और असम की बात नहीं है, पूर्वोत्तर भारत की अगर हम बात करें तो हर जगह विकास पर पूरा ध्यान है और विकास भी एक समग्र दृष्टिकोण के साथ, जहां पर हर क्षेत्र में विकास हो और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, जो पूरा मूलभूत ढांचा जो विकास के लिए जरूरी है, उस पर सरकार का बहुत ज्यादा ध्यान है। तो प्रधानमंत्री का जो पश्चिम बंगाल और असम का दौरा है उसमें कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण विकास परियोजनाएं हैं जिन पर सरकार ने ध्यान दिया है और जिनका या तो लोकार्पण किया है या शिलान्यास किया है? आप हमारे श्रोताओं को संक्षेप में ये जानकारी दें।
देखिए, दो दिन का प्रधानमंत्री का ये दौरा था और गुवाहाटी बराक वैली में उनका भाषण और योजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन करने के बाद असम में उन्होंने 19,480 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की शुरुआत की है और वहीं से उन्होंने कोकराझार है, जो बोडोलैंड का बड़ा हॉट सेंटर रहा है किसी जमाने में, वहाँ करीब 4,500 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की शुरुआत की। आज कोलकाता में उनका बड़ी सभा हुई है परेड ब्रिगेड ग्राउंड पर
जी।
और 8 से 9 लाख लोग वहाँ मौजूद है। वहाँ भी लगभग 19,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के लिए प्रधानमंत्री ने कल भी गुवाहाटी में भी ये कहा और कोकराझार में जब उन्होंने मीटिंग की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, तो उन्होंने दोनों सभाओं में इस बात पर बल दिया कि पिछली कांग्रेस सरकार ने उत्तर पूर्व को उसके हाल पर छोड़ दिया था और इस कारण इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। और जब जब आप प्रधानमंत्री के उत्तर पूर्व के दौरों को देखेंगे तो उन्होंने डेवलपमेंट के साथ वहाँ की संस्कृति को, सभ्यता को, लोकाचार को भी अपने दौरों के साथ देखा है। अगर हम उत्तर पूर्व की बात करें तो आप ये समझिए कि 2014 में जब से मोदी सरकार आई है तो लगभग 6.11 लाख करोड़ रुपए का खर्च और उत्तर पूर्व में विभिन्न योजनाओं पे, जिसमें कनेक्टिविटी है, जिसमें इलेक्ट्रिफिकेशन है, जिसमें एजुकेशन है, हेल्थ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और दूसरे रोड है। बजटरी एलोकेशन भी अगर आप देखेंगे तो 2004 से 2014 तक जो बजटरी एलोकेशन था उसमें 14 से 24 तक 381% बजटरी एलोकेशन बढ़ा है
जी।
और पिछले 4 सालों में ही अगर आप 2021 से 2025 तक के फिगर्स को देखें, 3.20 लाख करोड़ का एलोकेशन था जिसमें 3.46 लाख करोड़ रुपए का खर्च हो चुका है। ये गवर्नमेंट की योजना है जिनका उद्घाटन हो चुका चालू है और मोदी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट को और अपना फोकस एक्ट ईस्ट जब वो कहते हैं तो उन्होंने उसके लिए क्या किया, एक मिनिस्ट्री अलग से बना दी, फिर नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल तो ऑलरेडी थी, फिर उन्होंने कहा कि सब मंत्रालय जो देश पैन इंडिया जो स्कीम होती है उनके लिए जो योजनाएं बनाते हैं उसमें 10% मैंडेटरी एलोकेशन उत्तर पूर्व के राज्यों के लिए रहेगा
जी।
इसके कारण क्या हुआ है कि बहुत सारी योजनाएं जो दूसरे राज्यों को मिलती रही, उत्तर पूर्व को नहीं मिलती रही, वो उन योजनाओं का लाभ आप मिल रहा है। अभी इस समय लगभग 3600 योजनाएं उत्तर पूर्व में चल रही है, 50,000 करोड़ के आसपास की है और इनमें से ज्यादातर मतलब 60% से ऊपर योजनाएं जो हैं वो कवर होने के, पूर्ण होने के, इसमें सड़कें बन रही है, बिजली का उत्पादन हो रहा है, पानी की व्यवस्था हो रही है, हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, एजुकेशन का बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर। कल असम में गुवाहाटी में प्रधानमंत्री ने अपनी सभा में और असम के युवाओं को कहा कि आपके लिए तो बड़ा नया क्षितिज मिला है, सेमीकंडक्टर यूनिट देश की पहली और इकाई असम में स्थापित हुई है। कोकराझार के लोगों को बोडो समस्या पर 2020 में भारत सरकार ने बोडो विद्रोहियों के साथ समझौता किया था और प्रधानमंत्री ने कल भी इस बात पर बल दिया अपनी सभा में कि उसमें जो जो वादे सरकार ने बोडो समुदाय से किए थे वो सब पूरे हो रहे हैं। 10,000 से ऊपर बोडो पूर्व विद्रोही मुख्य धारा में आए हैं। एक समग्र चित्र है नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट का, जो कल गुवाहाटी और कोकराझार की सभाओं में प्रधानमंत्री ने लोगों के सामने रखा।
जी उपासनी जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही विशद जानकारी दी, और प्रधानमंत्री ने असम में बोलते हुए ये भी कहा कि रिफाइनरीज की बात की, उनके विकास की बात की, उनके विस्तार की भी बात की, और पूरे जो नॉर्थ ईस्ट जो हमारा पूर्वोत्तर भारत है उसमें किस तरह से गैस पाइपलाइन का विस्तार किया जा रहा है, इस बारे में प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
बीजेपी एनडीए की सरकार ने हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी के विस्तार के लिए काम किया है। आज भारत दुनिया का वो देश है जो अपनी ही नहीं बल्कि विश्व की ऊर्जा जरूरतों का भी ध्यान रख सकता है। यहाँ असम में जो हमारी रिफाइनरीज हैं उनको भी बीते वर्षों में एक्सपांड किया गया है। असम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट में गैस पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश किया जा रहा है। नुमालीगढ़ सिलीगुड़ी पाइपलाइन के अपग्रेडेशन का काम भी पूरा हो चुका है और असम के गोलाघाट में दुनिया का पहला सेकंड जनरेशन बायो एथेनॉल प्लांट भी स्थापित किया गया है।
उपासनी जी, आपने सुना कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही विस्तार से बताया कि पूरा जो हमारा पूर्वोत्तर भारत है और खासतौर से असम में किस किस तरह की योजनाएं चल रही हैं, खासतौर से ऊर्जा के क्षेत्र में, और ऊर्जा कितना महत्वपूर्ण हो गया है ये मौजूदा दौर में हम सबको समझ में आ रहा है। आप इस बारे में कुछ और जोड़ना चाहेंगे?
देखिए, जो शिलांग सिलचर हाई स्पीड कॉरिडोर जो बन रहा है, जिसको बराक वैली से सिलचर कल उद्घाटन किया उन्होंने, बहुत पुरानी मांग थी, और ये कॉरिडोर मिजोरम से जोड़ेगा बराक वैली को। बराक वैली को और सिलचर वैली, जो बराक वैली का गेटवे है, वो एक तरह से जो उत्तर पूर्व का सारा विकास है उसका वो हब बनने वाला है। और जैसा कल प्रधानमंत्री ने कहा कि 2500 किलोमीटर की रेल नेटवर्क है असम का, लगभग इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा हो गया है, दूसरे जिले में भी वो पूरा किया जाएगा। और ये जो शिलांग सिलचर हाई स्पीड कॉरिडोर है ये पहला है उत्तर पूर्व में, और नॉर्थ ईस्ट के लॉजिस्टिक के भी हिसाब से और उसके सारे डेवलपमेंट के हिसाब से भी ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसे कुछ कॉरिडोर ही देश भर में अभी बने हैं, तो इससे पता लगता है कि गवर्नमेंट कितनी सीरियस है उत्तर पूर्व के विकास के लिए। बराक वैली तो खासतौर पे चाय बागान और खेतिहर मजदूर, और फिर विविधता वहाँ की है, असमिया है, बंगाली है, ट्राइबल्स हैं, तो सब तरह के लोगों को साथ में लेकर, तो जहाँ पर पहले कभी असंतोष था, जहाँ पर कभी अलगाव की भावना थी, आज डेवलपमेंट के कारण बहुत बड़ी सभाएं जो हुई हैं, गुवाहाटी की सभा भी बहुत बड़ी सभा थी, और कोकराझार में भारी बारिश में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मैंने उसको लाइव देखा था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री गुवाहाटी से संबोधित कर रहे थे और लोग जोश में नारे लगा रहे थे, इससे पता लगता है कि कैसा बदल हो रहा है।
उपासना जी, एक मैं किसानों की बात भी करना चाहूंगा यहाँ पे। खेती के क्षेत्र में जिस तरह का परिवर्तन आया है देश में, और सरकार जिस तरह की योजनाएं लेके आई है खेती के लिए भी, किसानों की सामाजिक सुरक्षा के लिए भी, और इस तरह की योजनाओं का काफी बड़ा असर असम और पूर्वोत्तर भारत में दिखाई देता है, आप इस बारे में और क्या जानकारी देना चाहेंगे?
प्रधानमंत्री ने कल ही बताया वहाँ सभा में गुवाहाटी के, कि असम के जो किसान हैं उनको किसान सम्मान निधि के ही 20,000 करोड़ रुपए उनके खाते में आ गए हैं, और वो निरंतर जारी है। अभी प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि की और एक अगली किस्त जारी की है, उसका भी एक बड़ा हिस्सा आया है। सिर्फ असम ही नहीं बल्कि उत्तर पूर्व में जो लोग भी, असम में हम जाते हैं कि ट्रेडिशनल खेती तो होती ही है, लेकिन अलग तरह की खेती भी इन पहाड़ी राज्यों में होती है, झूम खेती होती है
जी,
उन
जी।
सब खेती को और बागानों पे खासतौर पे विविधता, एक बोर्ड बना है भारत सरकार ने बनाया है, क्योंकि जितनी जैव विविधता उत्तर पूर्व के राज्यों में है उसके डेवलपमेंट के लिए, वनस्पतियों के लिए, जड़ी बूटियों के लिए, तो जो फार्मिंग है वो सिर्फ खेती तक ही सीमित नहीं है
जी।
वो बागानों तक है, फूल पौधों तक है, जड़ी बूटियों तक है, तो उन सबके लिए डेवलपमेंट के लिए सरकार पैसा लगा रही है और बड़ा डेवलपमेंट हुआ है।
उपासनी जी, आपने भी जिक्र किया, प्रधानमंत्री ने खासतौर से जो युवाओं के विकास की बात की, उनको नए अवसर देने की बात की, और सेमी कंडक्टर जैसे क्षेत्र में भी असम में शुरुआत हो रही है, आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने इस बारे में क्या कहा।
आज असम के युवाओं के सामने अवसरों का खुला आसमान है। आज असम भारत के सेमी कंडक्टर सेक्टर का अहम हिस्सा बन रहा है। यहाँ नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा इकोसिस्टम और टैलेंट तैयार हो रहा है। यहाँ आईआईटी और आईएम जैसे संस्थान बन रहे हैं। मेडिकल कॉलेज, एम्स और कैंसर अस्पतालों का सशक्त नेटवर्क बन रहा है।
तो पासनी जी, हमने असम की और पूर्वोत्तर भारत के विकास की बात की, तो आइए चलते हैं पश्चिम बंगाल की ओर। प्रधानमंत्री जी ने वहां भी बहुत बड़ी सभा की है और बहुत सारी विकास परियोजनाओं को समर्पित किया है या उनका शिलान्यास किया है। तो मैं आपसे और जानना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने कौन से ऐसे मुख्य कदम हैं जिनकी घोषणा की है पश्चिम बंगाल में।
अगर आप प्रधानमंत्री के जो दौरे हैं उनको देखें, खासतौर पर उत्तर पूर्व और पश्चिम बंगाल के दौरे, डेवलपमेंट पर ज्यादा जोर है। अब कोलकाता में ही पश्चिम बंगाल के लिए उन्होंने लगभग 20,000 करोड़ की विकास योजना की घोषणा की है। 18,680 करोड़ एग्जैक्ट उसका डेवलपमेंट के जो काम है उसको शुरुआत उन्होंने आज की है, वहां सभा में इसकी घोषणा भी की है। तो अगर आप उनके भाषणों में भी देखें वो किन बात पर जोर दे रहे हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दे रहे हैं, रेल नेटवर्क को इलेक्ट्रिफिकेशन पर ब्रॉडगेज में बदलने पर, जैसे उत्तर पूर्व में सारा रेल नेटवर्क ब्रॉडगेज में बदला जा रहा है, वैसे ही कोलकाता में भी जिलावर्ती सीमावर्ती इलाकों में ये हो रहा है। फिर बॉर्डर की फेंसिंग पर भी खर्चा हो रहा है और उसके लिए भी अलग योजनाएं बनी। घुसपैठियों का मुद्दा पश्चिम बंगाल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उत्तर पूर्व के लिए भी महत्वपूर्ण है।
जी उपासनी जी, आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने कोलकाता में क्या कहा।
आज कोलकाता की धरती से पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत के विकास का नया अध्याय लिखा जा रहा है। सड़क, रेलवे और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इनसे जुड़ी 18,000 करोड़ रूपये से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये प्रोजेक्ट पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत को नई रफ्तार देंगे। इनसे व्यापार और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, लाखों लोगों का जीवन आसान होगा, उन्हें नए अवसर मिलेंगे।
तो उपासनी जी, जैसा हमने सुना कि प्रधानमंत्री जी ने सड़क, रेलवे, पोर्ट, पूरी कनेक्टिविटी की बात की, आप भी इस बात का जिक्र कर रहे थे, और इससे व्यापार और उद्योग धंधे के नए अवसर पैदा होंगे, आप इसमें और क्या जोड़ना चाहेंगे।
लोग बदलाव चाहते हैं और बदलाव इसलिए चाहते हैं कि उनके राज्य का विकास हो। उसमें बंगाल में बंगाली तो है ही है, लेकिन दूसरी भाषा भाषी के लोग भी हैं, आदिवासी बहुत बड़ी संख्या में हैं। जो टोटल डेवलपमेंट लोग चाहते हैं ये सभा में भी दिख रहा है। उनकी सभा में जैसा रिस्पांस लोग कर रहे हैं प्रधानमंत्री के बयान पे, हम 14 से देख रहे हैं कि एनडीए की जो केंद्र में सरकार है उसने विरोधी दलों की सरकारों के साथ, राज्य सरकारों के साथ भी कभी भेदभाव नहीं किया है। सेंट्रल और राज्य के जो आर्थिक बंटवारे, संसाधन बंटवारे में कोई भेदभाव नहीं, डेवलपमेंट होना चाहिए, इस पर उनका आग्रह है और उसके नतीजे हम बंगाल में भी देखने को मिलेंगे हमको जल्दी।
जी लेकिन उपासना जी, जब हम विकास की बात करते हैं, प्रधानमंत्री इतनी सारी योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया और आधारशिला रखी और नए योजनाएं शुरू हुई, लेकिन इसमें राज्य सरकार की तो कहीं ना कहीं भागीदारी जरूरी है, क्योंकि हम जब विकास की बात करते हैं तो समग्र विकास के लिए जरूरी है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर उन विकास परियोजनाओं पर काम करें जिससे वो जल्दी पूरी हो सकें और लोगों को उनका लाभ मिल पाए।
आयुष्मान भारत जैसी योजना और कई केंद्र की योजनाएं बंगाल में लागू नहीं की गई, उसके कारण लोग पीड़ित है, गरीबों को और उस सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास जैसी योजना भी वहां शुरू नहीं है। तो कुछ सरकार, अब हम एक समवर्ती सूची के संविधान में काम करते हैं तो राज्य सरकार उसमें कितना सहयोग करती है ये राज्य सरकार पर निर्भर करता है, लेकिन जो केंद्र की योजनाएं केंद्र के नियंत्रण में है, जिसकी निगरानी केंद्र करता है, उस पर जरूर 100% काम होता है।
उपासनी जी, तो चलते हैं अब हम कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। आपने बहुत ही विस्तार से और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे श्रोताओं को ये बताया कि किस तरह से जो पश्चिम बंगाल और असम में विकास की परियोजनाएं चल रही हैं और जिन पर आगे काम होने वाला है, उससे लोगों को और राज्यों को किस तरह से लाभ होगा। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
सुर्खियों में